नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला आज सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटेनिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजवानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। मणिपुर के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों ने नई दिल्ली में बैठक के बाद राज्य में शांति स्थापित करने का संकल्प लिया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय और पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए उमर अब्दुल्ला के लिए मंच तैयार किया गया है। श्री अब्दुल्ला अपने मंत्री परिषद के साथ आज सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पद की शपथ लेंगे। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री की भूमिका में उमर अब्दुल्ला की वापसी ने लोगों में काफी उत्साह पैदा कर दिया है, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल।
शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। हरियाणा में आज आयोजित होने वाली एक बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस बीच कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए चंडीगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल शाम नई दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। भाजपा मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में अगले महीने की 13 और 20 तारीख को दो चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
एनडीए और इंडिया अलायंस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि भाजपा इस बार आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और CPIML के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घटक दलों के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है। इस बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। वे पड़ोसी देश पाकिस्तान के दो दिन के दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान की अध्यक्षता में हो रही SCO की इस बैठक में डॉक्टर जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय उद्देश्य के लिए है। उन्होंने इस अवसर पर किसी भी द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से इंकार किया था। ये 9 वर्ष में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पड़ोसी देश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की 3 दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद अपने दौरे के दूसरे चरण में आज मॉरिटेनिया के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय नेताओं और शिष्टमंडल के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मॉरिटेनिया की 1 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी।
सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय अरुण कुमार चटर्जी ने राष्ट्रपति की अल्जीरिया यात्रा पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रही है और इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। श्री अरुण कुमार ने कहा कि भारत ब्रिक्स में अल्जीरिया की सदस्यता के मामले के समर्थन करेगा जब भी यह मामला सम्मेलन में लाया जाएगा। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति आज मॉरिटेनिया में 1 दिन का दौरा में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटेनिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औद गसौनी और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत भी करेंगे। अल्जीरिया से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूष।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के तीसरे चरण में राष्ट्रपति कल मलावी पहुंचेंगी। इन देशों की यात्रा का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को सशक्त करना और विस्तार देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग का आह्वान करते हुए सुरक्षा, सम्मान और समानता को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है। उद्योग जगत के नेताओं ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 के दौरान 8वीं भारत मोबाइल कांग्रेस में डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की है। इन नेताओं ने सुधार, नवाचार और सहयोग के लिए सरकार के सहयोग की भी सराहना की। एक रिपोर्ट।
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। भारतीय एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता पर जोर देते हुए दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की यात्रा का उल्लेख किया। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानने में सरकार द्वारा दिए जा रहे दृढ़ समर्थन को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की महासचिव सुश्री डोरेन बोगदान मार्टिन ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह श्री मोदी ने सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को पूरी दुनिया के साथ साझा करने की भारत की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करने का नेतृत्व किया। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
मणिपुर के कुकी, जोमार, मैतेई और नगा समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्यों के एक समूह की कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें राज्य के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की गई। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि राज्य के सभी समुदायों से अपील की जाए कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें ताकि निर्दोष नागरिकों को इन हिंसक घटनाओं का शिकार होने से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने आवास पर इसराइल के राजदूत रुवैन अजर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रयागराज में अगले वर्ष आयोजित होने वाले महाकुंभ को अधिक सुरक्षित बनाने और पुलिस के आधुनिकीकरण तथा ड्रोन निरोधक तकनीक के लिए भी इसराइल से मदद की अपेक्षा है। दोनों नेताओं ने इसराइल के लिए उत्तर प्रदेश से कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने पर भी बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ कल विकाराबाद में भारतीय नौसेना के वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF राडार स्टेशन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि VLF स्टेशन का निर्माण देश के समुद्री हितों को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये सशस्त्र बलों के लिए वरदान साबित होगा। संसद की संयुक्त समिति JPC की कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की गई। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधेयक के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिया गया। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर तक पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम टेस्ट 1 से 5 नवंबर तक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने कल रात दुबई में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप बी में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने इंग्लैंड को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन पर ही समेट दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की नताली सिवर ब्रंट ने 50 गेंद पर 57 रन बनाए। वेस्टइंडीज की अफी फ्लेचर ने 3 विकेट लिए। 141 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 12 गेंद रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। ओपनर कियाना जोसेफ और हेली मैथ्यूज ने 50-50 रन बनाए। जोसेफ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, जबकि ग्रुप बी से दक्षिण अफ्रीका ने भी वेस्टइंडीज के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कल दुबई में दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार को शारजाह में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान देश के दक्षिणी हिस्सों तथा पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक कोंकण और गोवा में भी तेज वर्षा होने के आसार हैं। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चेन्नई से लगभग 490 किलोमीटर दूर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कल सुबह पुदुचेरी और नेल्लोर के बीच उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों से भीतरी भागों पर पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। चेन्नई, कडलूर, एन्नोर, कत्तुपल्ली और पुदुचेरी में तूफान की सिग्नल 3 स्तर की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में आज तेज बारिश होने की संभावना के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद विशाल। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव तिथियों की घोषणा आज के सभी समाचार पत्रों की पहली खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, महाराष्ट्र झारखंड में बजा चुनावी बिगुल, एनडीए और इंडिया की साख दांव पर। हिंदुस्तान ने लिखा है, 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा। वहीं अमर उजाला ने एग्जिट पोल पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बयान को दिया है कि एग्जिट पोल और फटाफट रुझान पर तय होनी चाहिए जवाबदेही। मुफ्त सौगातों पर निर्वाचन आयोग से जवाब तलब दैनिक ट्रिब्यून में है। पत्र के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों के वायदों के खिलाफ एक नई याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द दैनिक जागरण में है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी देश अकेले साइबर खतरे और चुनौतियों से नहीं निपट सकता। भारत और कनाडा के बीच जारी तनातनी भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कूटनीतिक विवाद और गहराया, भारत ने कनाडा के नए आरोपों को सिरे से खारिज किया। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत, दोनों देशों के बीच 32,000 करोड़ रुपए की डील। दैनिक भास्कर के अनुसार भारत को मिलेंगे हंटर किलर ड्रोन, चीन सीमा पर बढ़ेगी देश की युद्ध क्षमता। 100% इको फ्रेंडली, ग्रीन, ऑर्गेनिक जैसे दावों का आधार बताना होगा कंपनियों को, नवभारत टाइम्स ने लिखा है। सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पर्यावरण से जुड़े फर्जी दावों पर लगाम कसने के लिए जारी की गाइडलाइंस।
धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला आज सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटेनिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजाउनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। मणिपुर के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों ने नई दिल्ली में बैठक के बाद राज्य में शांति स्थापित करने का संकल्प लिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय और पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।